एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम संगीत की दुनिया को एक जरा अलग नजरिए से देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एथनोम्यूजिकोलॉजी की और हमारी गाइड हैं टिमोथी राइस की किताब एथनोम्यूजिकोलॉजी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो संगीत को सिर्फ गाने बजाने या एंटरटेनमेंट से आगे ले जाता है।
बिल्कुल, ये समझने में मदद करता है कि संगीत का सांस्कृतिक मतलब क्या है, कितना गहरा है।
और देखिए, आज हमारी कोशिश यही है कि संगीत का असल रोल क्या है, कैसे ये कल्चर को दिखाता है, और सिर्फ दिखाता नहीं बल्कि बनाता भी है।
हाँ, ये दिलचस्प बात है, बनाता भी है।
बिल्कुल, तो इस चर्चा का एक लक्ष्य ये भी है कि एथनोम्यूजिकोलॉजी हमें इंसानों के बारे में, समाज और पहचान के बारे में क्या सिखा सकती है।
और आज के टाइम में ये तो और भी रिलेवेंट हो गया है ना?
बिल्कुल, दुनिया इतनी जुड़ी हुई है, हम रोज कितनी तरह का संगीत सुनते हैं अलग अलग कल्चर्स का।
हाँ, तो फिर ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि किसी धुन के पीछे असल में है क्या, लोगों की जिंदगी, उनके इमोशंस, कहानी क्या है।
सही कहा, सिर्फ ये नहीं कि सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं,
हाँ,
ये एक तरह से दिमाग और दिल दोनों को खोलने वाली समझ है। तो चलिए पहले लेखक से मिलते हैं, टिमोथी राइस।
हाँ, बताइए कौन है टिमोथी राइस, क्या है उनका बैकग्राउंड?
टिमोथी राइस एथनोम्यूजिकोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। वो UCLA यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, वहाँ प्रोफेसर एमरेटस हैं।
अच्छा,
और सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं, वो सोसाइटी फॉर एथनोम्यूजिकोलॉजी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जो इस फील्ड की आप कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट संस्थाओं में से एक है।
ओ, यानी इस विषय के एक मजबूत स्तंभ है वो।
निश्चित रूप से, लेकिन उनकी खास बात सिर्फ ये डिग्रियां या पोजीशंस नहीं है, उन्होंने सालों तक फील्ड वर्क किया है, जमीन पर उतरकर काम किया है, खासकर बुल्गारिया में।
बुल्गारिया, अच्छा।
हाँ, उनकी एक बहुत फेमस किताब भी है, मे इट फिल योर सोल, एक्सपीरियंसिंग बल्गेरियन म्यूजिक, जो उनके इसी गहरे अनुभव पर बेस्ड है।
तो क्या चीज है जो उन्हें खास बनाती है, उनका अप्रोच कैसा है?
सबसे खास बात मुझे लगती है कि उनमें किताबी ज्ञान और जमीनी अनुभव का गजब का मेल है। उन्होंने बुल्गारियाई संगीत पर सिर्फ लिखा नहीं,
अच्छा,
उन्होंने वहाँ का एक पारंपरिक बाजा है, बैगपाइप जैसा, गाइडा, वो बजाना भी सीखा।
अरे वाह, ये तो कमाल है।
हाँ, सोचिए ये कितना अलग नजरिया देता होगा, संगीत को सिर्फ दूर से नहीं देखना बल्कि उसे जीना।
सही बात है, किताबी ज्ञान से तो बहुत आगे की बात हुई है।
बिल्कुल, और यही चीज उनके नजरिए को बहुत ह्यूमैनिस्टिक, मानवतावादी बनाती है। वो एम्पैथी पर, सहानुभूति पर जोर देती हैं, हर कल्चर को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में समझने पर जोर देती हैं,
जिसे कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं।
हाँ, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। और सबसे बड़ी बात, संगीत बनाने वाले लोगों के अपने पर्सनल अनुभवों पर उनका फोकस रहता है। वो सिर्फ बताते नहीं कि एथनोम्यूजिकोलॉजी क्या है, वो उसे जी कर दिखाते हैं।
बहुत दिलचस्प। तो बातें हैं किताब पर, इसका मेन आइडिया क्या है, सार क्या है?
देखिए, किताब का निचोड़ ये है कि संगीत सिर्फ आवाज या कोई कला की चीज नहीं है।
ओके।
ये इंसानों का एक सामाजिक काम है, बहुत जटिल, जो हमारी संस्कृति में अंदर तक घुला मिला है। राइस कहते हैं कि संगीत वो चीज है जो लोग करते हैं, ये सिर्फ सुनने या बनाने की चीज नहीं है।
संगीत जो लोग करते हैं, सुनने में तो सिंपल लगता है, पर शायद गहरा मतलब है इसका।
बहुत गहरा। इसका मतलब है कि अगर संगीत को समझना है तो उसे अकेले में नहीं देख सकते, उसे इंसानी जिंदगी के पूरे ताने बाने में देखना होगा।
अच्छा।
राइस के हिसाब से संगीत वो तरीका है जिसे लोग दुनिया को मीनिंग देते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, रिश्ते जीते हैं, जिंदगी को महसूस करते हैं। यही किताब की सबसे बड़ी इनसाइट है।
तो संगीत का रोल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि लाइफ को बनाना है।
बिल्कुल, जीवन निर्माण।
तो किताब का बेसिक सवाल क्या है फिर, किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है ये?
सवाल सीधा है, भाई ये एथनोम्यूजिकोलॉजी है क्या बला, और ये जरूरी क्यों है? और ये उस आम सोच को चैलेंज करती है जो संगीत को अक्सर वेस्टर्न चश्मे से देखती है, महान कंपोजर्स, उनकी रचनाएं, टेक्निक। राइस कहते हैं नहीं, संगीत का अध्ययन लोगों को संगीत बनाते हुए देखना, उनको समझना।
और ये किताब क्या सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, या आम पाठक भी पढ़ सकता है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खूबी है, ये बहुत आसान भाषा में समझाती है। स्टूडेंट्स हो, म्यूजिशियन हो, या कोई भी जिसे संगीत और संस्कृति में दिलचस्पी हो,
अच्छा,
सबके लिए ये एक बढ़िया स्टार्ट है। ये हमें संगीत की जो बनी बनाई खासकर पश्चिमी सोच है उससे हटाकर एक ज्यादा खुली सांस्कृतिक रूप से सेंसिटिव समझ की ओर ले जाती है।
मतलब ये अलग अलग म्यूजिक की लिस्ट नहीं है?
नहीं, ये सोचने का एक नया तरीका सिखाती है।
चलिए तो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, किताब के चैप्टर्स कैसे आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर क्या कहता है?
पहला चैप्टर बिल्कुल बेसिक सेट करता है एथनो म्यूजिकोलॉजी है क्या। राइस की परिभाषा बहुत सीधी है, लोगों का संगीत बनाने का अध्ययन।
हाँ, ये आपने पहले भी कहा था, फोकस लोगों पर।
बिल्कुल, फोकस तुरंत साउंड से हटकर लोगों पर आ जाता है। ये चैप्टर थोड़ा इतिहास भी बताता है कि कैसे ये कंपैरेटिव म्यूजिकोलॉजी से शुरू हुआ,
तुलनात्मक संगीत शास्त्र।
हाँ, जिसने दुनिया भर के संगीत को जमा करके वेस्टर्न स्केल पर तोला जाता था। कभी कभी उसमें थोड़ी कॉलोनियल सोच भी थी।
लेकिन फिर बदलाव आया होगा, जाहिर है।
हाँ बिल्कुल, बड़ा बदलाव आया। एलन मेरियम जैसे स्कॉलर्स ने कहा कि ये संस्कृति में संगीत का अध्ययन है, और फिर मेंटल हुड ने बाई म्यूजिकैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया।
बाई म्यूजिकैलिटी मतलब
द्वि संगीतज्ञता, यानी जिस संगीत को आप स्टडी कर रहे हो उसे बजाना सीखो। जैसे राइस ने वो गाइडा सीखा, तो ये दो पैरों पर खड़ा है, म्यूजिक का एनालिसिस और कल्चर की स्टडी।
और ये समझ हासिल कैसे होती है? अगला चैप्टर शायद इसी तरीके पर होगा।
एकदम। दूसरा अध्याय है फील्ड वर्क पर, जिसे राइस एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट का क्राफ्ट मतलब हुनर या शिल्प कहते हैं। ये इस सब्जेक्ट की आत्मा है।
तरीका क्या है इसका?
तरीका है एथनोग्राफिक फील्ड वर्क, नृवंश विज्ञान फील्ड वर्क। मतलब सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर विश्लेषण नहीं करना, बल्कि किसी समुदाय में लंबे समय तक रहना, घुलना मिलना, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना।
इसमें सबसे जरूरी क्या होता है?
जो टेक्निक है उसे कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी प्रतिभागी अवलोकन। रिसर्चर सिर्फ दूर से देखता नहीं है, वो एक्टिवली हिस्सा लेता है।
जैसे राइस का गाइडर सीखना?
हाँ बिल्कुल, वही। वो अपने बल्गेरियाई अनुभव के बारे में लिखते हैं, कैसे उन्होंने एक मास्टर प्लेयर से सीखा, क्या मुश्किलें आईं। ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है, ये इंसानी रिश्ते बनाना है। यही राइस का वो कोट आता है जो मुझे बहुत पावरफुल लगता है। एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट का मुख्य उपकरण टेप रिकॉर्डर नहीं बल्कि स्वयं है, ज्ञान अनुभव और रिश्तों से आता है।
ये तो बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हो गई, खुद को ही टूल मानना।
हाँ, इसीलिए एथिक्स यानी नैतिकता बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप जिस समुदाय के साथ काम कर रहे हैं उनका सम्मान, उनकी कहानी सही ढंग से कहना, कल्चरल प्रॉपर्टी का ध्यान रखना। ज्ञान मिलकर बनता है, छीना नहीं जाता।
फील्ड वर्क से आगे किताब व्यक्ति पर कैसे फोकस करती है? तीसरा अध्याय।
हाँ जी, तीसरा चैप्टर है व्यक्ति और उसका संगीत अनुभव। लोग संगीत बनाते क्यों हैं, सीखते कैसे हैं, क्रिएटिविटी क्या है। यहाँ राइस फिर उस वेस्टर्न ग्रेट कंपोजर वाले आइडिया को चैलेंज करते हैं। कई कल्चर में म्यूजिक बनाना एक ग्रुप एक्टिविटी है, या इम्प्रोवाइजेशन है, मौके पर बनता है, या फिर परंपरा का हिस्सा है।
तो क्या परंपरा में कोई पर्सनल टच नहीं होता?
होता है, बिल्कुल होता है। संगीतकार उस परंपरा के दायरे में रहकर भी अपनी पहचान कैसे बनाते हैं, अपनी स्टाइल कैसे लाते हैं, यही देखना तो इंटरेस्टिंग है। किसी आर्टिस्ट की लाइफ स्टोरी, उसकी मोटिवेशन, ये सब उसके संगीत को समझने में हेल्प करती हैं।
यहाँ फिर से वो बात आ गई, संगीत के पीछे के इंसान को समझना।
बिल्कुल, यही एथनोम्यूजिकोलॉजी का लक्ष्य है।
अच्छा, व्यक्ति से आगे बढ़कर संगीत समाज में कैसे जिंदा रहता है? चैप्टर 4।
हाँ, चौथा अध्याय है संगीत का, सामाजिक रख रखाव। अब फोकस इंडिविजुअल से कम्युनिटी पर शिफ्ट होता है। संगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचता है? राइस बताते हैं कि संगीत समाज को जोड़ने का, मतलब सोशल कोहिजन का एक बहुत पावरफुल टूल है।
ये साझा मूल्यों को मजबूत करता है।
बिल्कुल, इसके उदाहरण तो देखिए हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं।
हाँ, सोचिए जरा, शादी ब्याह, त्योहार, धार्मिक रस्में, है ना?
हाँ, पूजा पाठ, यहाँ तक के पॉलिटिकल रैलियों में भी संगीत क्यों होता है? राष्ट्रगान हमें जोड़ता है, भजन हमें भक्ति से जोड़ता है, कोई प्रोटेस्ट सॉन्ग हिम्मत देता है।
अच्छा,
यहाँ एक और गहरा आइडिया सामने आता है। राइस लिखते हैं, संगीत सिर्फ संस्कृति को दर्शाता नहीं है, ये सक्रिय रूप से इसे बनाता और आकार देता है।
ओ, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग है। संगीत सिर्फ आईना नहीं बल्कि बनाने वाला भी है।
हाँ, समाज को गढ़ता भी है।
और क्या, संगीत हमेशा एक जैसा रहता है या बदलता भी है? पांचवा अध्याय शायद इसी पर होगा।
बिल्कुल, पांचवा चैप्टर संगीत, इतिहास और मॉडर्निटी के रिश्ते को देखता है। ये दिखाता है कि संगीत कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है, ये जिंदा है, बदलता है।
अच्छा।
ऐतिहासिक घटनाओं का, सामाजिक बदलावों का इस पर असर पड़ता है। राइज फिर बुल्गारिया का उदाहरण देते हैं, ऑटोमन दौर, फिर नेशनलिज्म का दौर, कम्युनिस्ट दौर और फिर ग्लोबलाइजेशन। हर दौर में संगीत ने कैसे रूप बदला।
और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी का, ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है?
बहुत गहरा। संस्कृतियां मिलती हैं तो नई स्टाइल बनती हैं, इसे सिंक्रेटिज्म कहते हैं। कभी संगीत एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाता है तो उसके मायने बदल जाते हैं, अप्रोप्रिएशन जिसे कहते हैं। और फिर वर्ल्ड म्यूजिक जैसी कैटेगरीज बन जाती हैं, जिनके अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी।
और आखिर में संगीत का मतलब कैसे बनता है, छठा अध्याय?
हाँ, छठा अध्याय संगीत और मीनिंग की पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। आवाज यानी सुर, ताल, लय और हमारी समझ के बीच क्या रिश्ता है।
ये कैसे तय होता है कि कोई धुन खुशी की है या गम की?
यही तो बात है। राइस समझाते हैं कि संगीत का मतलब काफी हद तक कल्चरली सीखा जाता है। एक ही धुन एक कल्चर में खुशी की हो सकती है, दूसरी में दुख की।
क्या संगीत का यादों से, जगहों से भी कोई कनेक्शन है?
बहुत गहरा। संगीत एकदम से यादें ताजा कर देता है, किसी खास जगह का एहसास कराता है। राइस इसे सोनोस्केप कहते हैं, मतलब किसी जगह की अपनी साउंड आइडेंटिटी।
सोनोस्केप, अच्छा शब्द है।
हाँ, और कभी कभी संगीत हमें वो महसूस कराता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यही संगीत की ताकत है। यह हमारे अनुभवों को ऑर्गेनाइज करता है, उन्हें आवाज देता है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मोटी मोटी बातें, की टेकअवेज क्या हैं?
सबसे जरूरी संदेश, मेरे हिसाब से पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है, संगीत सिर्फ ध्वनि नहीं, संस्कृति है। इसे समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। कौन गा रहा है, क्यों गा रहा है, कहाँ गा रहा है, किसके लिए। भारत में ही सोचिए ना, किसी राज्य में शादी का गीत किसी दूसरे राज्य से कितना अलग होता है और वो समाज के बारे में कितना कुछ बताता है।
बिल्कुल। और दूसरी बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी वो है फील्ड वर्क का महत्व, जमीनी अनुभव।
हाँ,
सच्ची समझ किताबों से ज्यादा लोगों के बीच रहने से, उनसे जुड़ने से आती है।
हाँ,
किसी गांव के लोक कलाकार के साथ बैठ के बात करना, उसे गाते हुए देखना, ये किसी आर्टिकल को पढ़ने से बिल्कुल अलग अनुभव है।
एकदम सही। और तीसरी बात, संगीत पहचान बनाने का एक बहुत पावरफुल जरिया है।
पहचान कैसे?
चाहे वो हमारी पर्सनल चॉइस हो, हमारे ग्रुप का कोई गाना हो या राष्ट्रगान हो, संगीत हमें बताता है कि हम कौन हैं और कभी कभी वो कौन है। सोचे, गरबा सुनते ही गुजरात का ख्याल आता है, भांगड़ा सुनते ही पंजाब का।
हाँ, ये पहचान का सिंबल बन जाता है।
बिल्कुल। और चौथी बात ये कि संगीत रुका हुआ नहीं है, ये बदलता रहता है, डायनामिक है। कोई भी परंपरा एकदम प्योर या हमेशा से वैसी ही नहीं होती, वो बदलती है, नए असर कबूल करती है। बॉलीवुड म्यूजिक देखिए ना।
हाँ बिल्कुल,
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आखिरी पांचवी बात, वेस्टर्न म्यूजिक ही सेंटर नहीं है। एथनोम्यूजिकोलॉजी दुनिया की हर संगीत परंपरा को बराबर सम्मान देती है, बराबर गंभीरता से एनालाइज करती है,
चाहे वो कहीं जंगल में किसी कबीले का संगीत हो या शहर का कोई जैज कॉन्सर्ट।
हाँ, हर संगीत हमें इंसानी समाज के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में कुछ न कुछ सिखाता है।
किताब के कुछ यादगार विचार भी थे जिन्हें आपने बीच बीच में बताया था, उन्हें एक बार फिर से समेट सकते हैं।
हाँ, कुछ मेन आइडियाज जो पूरी सोच को कैप्चर करते हैं।
एथनोम्यूजिकोलॉजी इस बात का अध्ययन है कि मनुष्य संगीतकार क्यों और कैसे हैं। यह संगीत के बजाय संगीत बनाने वाले लोगों पर केंद्रित है, मतलब फोकस प्रोडक्ट से प्रोसेस और पर्सन पर है। दूसरा, एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट का मुख्य उपकरण टेप रिकॉर्डर नहीं बल्कि स्वयं है। ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव और रिश्ते बनाने से मिलता है, ये एम्पथी और ह्यूमन कनेक्शन की बात है।
सही है।
और तीसरा, संगीत सिर्फ संस्कृति को दर्शाता नहीं है, ये सक्रिय रूप से इसे बनाता और आकार देता है।
ये संगीत की सोशल पावर को दिखाता है।
ये तीसरा वाला विचार मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगता है कि संगीत सिर्फ भावनाओं को दिखाता नहीं, समाज को बनाता भी है। ये सोचना ही नजरिया बदल देता है।
बिल्कुल, और पहले दो हमें याद दिलाते हैं कि नॉलेज सिर्फ फैक्ट्स जमा करना नहीं है, वो इंसानी तजुर्बे और रिश्तों से जुड़ी हुई है।
तो ये सारी बातें, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, हम इन्हें कैसे अपना सकते हैं?
सबसे पहले तो शायद हम गहरी और सहानुभूति वाली लिसनिंग डेवलप कर सकते हैं।
मतलब कोई भी संगीत सुने, खासकर वो जो हमें अनजान लगे, तो रुक कर सोचें ये कहां से आया होगा, किन लोगों की कहानी कह रहा होगा। इससे ना सिर्फ संगीत सुनने का मजा बढ़ेगा बल्कि दूसरी संस्कृतियों के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी।
और शायद ट्रैवल करते हुए या अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हुए भी ये काम आ सकता है।
बिल्कुल, कहीं जाएं या किसी नए कल्चर के लोगों से मिलें तो उनके संगीत में इंटरेस्ट लें, पूछें उसके बारे में। ये सिर्फ टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं, उनके इतिहास, उनकी वैल्यूज को समझने का दरवाजा हो सकता है।
हम मीडिया में संगीत के इस्तेमाल को लेकर भी ज्यादा अलर्ट हो सकते हैं, है ना? एड्स में, फिल्मों में, रैलियों में संगीत कैसे हमारी फीलिंग्स को मैनिपुलेट करता है।
बिल्कुल, ये हमें एक ज्यादा अवेयर सिटीजन और कंज्यूमर बनाता है। और हम आपके पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं कैसे कोई गाना हमारी दोस्ती की निशानी बन गया, या कोई लोरी हमें बचपन की याद दिलाती है। संगीत हमारी अपनी कहानी का हिस्सा भी है। इंक्लूसिव अप्रोच अपनाना, दुनिया के अलग अलग म्यूजिकल ट्रेडिशंस को सम्मान देना, उन्हें समझना, ये एथनोम्यूजिकोलॉजी का एक बड़ा लेसन है।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि संगीत सिर्फ क्या नहीं बल्कि कौन, कैसे और क्यों है। और टिमोथी राइस का खुद गाइडा सीखना ये दिखाता है कि सच्ची समझ के लिए कितनी गहराई में उतरना पड़ता है।
और मेरे लिए सबसे स्थायी बात यह है कि संगीत का मतलब सिर्फ नोट्स में नहीं होता, वो नोट्स बनाने वाले, सुनने वाले और उनकी जो मिलीजुली दुनिया है उसके बीच में कहीं बनता है। और एम्पथी, दूसरे के जूते में पैर डालकर देखने की कोशिश, यही असली समझ की चाबी है। यह हमें अपने छोटे से दायरे से बाहर निकालकर दुनिया को ज्यादा खुलेपन से देखने में मदद करता है। ये सिर्फ एक एकेडमिक विषय नहीं, शायद एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता भी दिखाता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।